तो हमने पिछली बार भगवत गीता का पहला अध्याय का पहला श्लोक किया था। पिछली बार कितने लोग आए थे? हाउ मेनी पीपल वर देयर? अच्छा, तो आप सब लोगों को याद होगा कि पिछली बार जो है हमने पहले अध्याय का पहला श्लोक किया था, एंड वी विल बी डूइंग इम्पोर्टेंट श्लोकास ऑफ भगवत गीता। जो भगवत गीता के जो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं वही हम लेंगे। तो जैसे पहले अध्याय में पहला श्लोक है, उसके बाद वैसे तो भगवत गीता के सारे ही इम्पोर्टेंट श्लोक हैं, लेकिन क्योंकि 700 श्लोक हैं और हफ्ते में एक श्लोक लें अगर हम, तो कितने सालों में हम कर पाएंगे भगवत गीता? कितने साल लग जाएंगे? 700 वीक्स। हाँ, 700 वीक्स का मतलब है, नो नो, 700 वीक्स का मतलब क्या है? Divided by 50। हाँ, कितना हो जाएगा? बहुत हो जाएगा, कई साल हो जाएंगे। मतलब इसलिए इंपॉर्टेंट श्लोक आज कुछ मेन मेन जो श्लोक जिनसे पूरा मैसेज क्लियर हो जाता है, फिर उसके बाद बीच के श्लोक जो है हम फ्लो में पढ़ेंगे। तो पिछली बार जो हमने किया था भगवत गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक किया था, और आज हम करेंगे पहले अध्याय का 39वां श्लोक, 1.39। लेकिन इसके बीच में जो श्लोक है वो भी हम पढ़ेंगे। तो भगवत गीता का आप सब लोगों को पता है कि भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, 700 में से जो है कम 574 श्लोक जो है भगवान कृष्ण ने बोले हैं, 84 श्लोक हैं अर्जुन ने बोले हैं, एक श्लोक धृतराष्ट्र ने, और बाकी जो बच गए हैं वो संजय ने बोले। और भगवत गीता के श्लोक शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि भगवत गीता का अगर हमें पूरा श्लोक नहीं, पूरी भगवत गीता तो छोड़ो, अगर हमें एक श्लोक नहीं तो फिर आधा आधा भी नहीं तो 1/4 श्लोक, सो मतलब दो वर्ड भी अगर याद रहेंगे पूरे जन्म में, अगर हम और मरते वक्त अगर हम शरीर छोड़ें और हमें सिर्फ आधा श्लोक ही याद है, आधे से 1/4 श्लोक याद है, तो वी विल गो बैक टू गॉड, भगवान के धाम जाएंगे। इतनी महिमा है भगवत गीता की। जिस घर में भगवत गीता होती है वहां पे बताया जाता है सारे तीर्थों का वास होता है। लेकिन आजकल कलयुग में क्या है, लोग बोलते हैं कि लोग क्या बोलते हैं कलयुग में कि भगवत गीता घर में रखेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। गलत है। तो पिछली बार जो पहला श्लोक किया था धृतराष्ट्र उवाचा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता युद्ध सभा माम का पांडवा शैव किम अकुर्वत संजया। तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म क्षेत्र धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो आप सब लोगों को पता होगा कि भगवत गीता किस कंटेक्स्ट में बोली गई, कब बोली गई, क्या सिचुएशन थी उस समय, क्या सिचुएशन थी? हाँ, और बताएगा कोई डिटेल में क्या चल रहा था उस टाइम? हाँ, यस, ओके। तो ये उस समय बोला गया भगवत गीता का जो ज्ञान है, जब दोनों सेनाएं खड़ी हैं और युद्ध के लिए तैयार हैं, और युद्ध के लिए तैयार हैं और दोनों जगह से, जैसे युद्ध की तैयारी के लिए युद्ध को शुरू करने से पहले जो शंख बजाते हैं, है ना, शंख बज चुके हैं, शंख भी बज चुके हैं उधर से, सबसे पहले इन्होंने बजाए कौरवों ने, फिर उसके बाद पांडवों ने बजाए। तो इस तरीके से युद्ध जस्ट शुरू होने वाला है, और उस टाइम अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि युद्ध जो रथ है उसको आप बीच में लेके जाइए। तो कम से कम जो है उनके बीच में 1 किलोमीटर का फासला था दोनों सेनाओं के बीच में, तो वो बीच में लेके गए हैं वहां पे, और वहां पे वो देख रहे हैं वहां पे कौन कौन है। बीच में लेके जाने का मतलब क्या है, वो देखना चाहते हैं नजदीक से कि कौन कौन इकट्ठे हुए हैं, और वहां पे वो देख रहे हैं कि कौन कौन उनको दिखे वहां पे, सारे रिश्तेदार, पितामह, गुरु, भाई, मामा, हर तरीके के रिश्तेदार हैं। और जिन रिश्ते जो सारे रिश्तेदार उनसे इतना प्रेम करते थे, उनकी गोदी में खेले हैं, और उन्हीं को आज वो मारने के लिए खड़े हैं। ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन हमारे सामने हो तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन हमारे सामने हो तो हम क्या करेंगे? हाँ, फिर मन क्यों मानेगा? फिर अर्जुन ने क्यों माना? हाँ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान जैसा चाहते हैं वैसा करना, यही भक्ति है। फाइनली अर्जुन को यह समझ में आया। भगवान ने जो पूरी भगवत गीता जब बोल दी तो अर्जुन को बोला कि नाउ अब आप जो करना चाहते हो करो, मैंने आपको बता दिया है ना। भगवान पूरा ज्ञान दे देते हैं, उसके बाद हमारे ऊपर छोड़ देते हैं, आपको फॉलो करना है करो, वरना मत करो। फिर अर्जुन ने क्या बोला कि यस नाउ है आई हैव अंडरस्टूड, अब मुझे समझ में आ गया है, और करीषे वचनम तवा, अब जो आप बोलोगे वही करूंगा। तो ये है। तो अर्जुन भगवत गीता शुरू करने से पहले हमें अर्जुन के करैक्टर को समझना चाहिए, तब हमें फील होगा कि अर्जुन जो है हम जैसे आम व्यक्ति नहीं है। अर्जुन जो है भगवान के पार्षद हैं, हमेशा भगवान के साथ रहते हैं धाम में, और भगवान जहां जहां लीला करते हैं उनके साथ साथ किसी ना किसी रूप में वो प्रकट होते हैं। और अब इस लीला में अर्जुन कंफ्यूज नहीं है, ये मत सोचना कि अर्जुन कंफ्यूज हो गए हैं। अर्जुन जो है थोड़े टाइम के लिए भगवान ने उनको ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में डाल दिया जिसकी वजह से वो ऐसे प्रश्न पूछें जो कि सारे जगत के लिए लाभकारी होंगे, कल्याणकारी होंगे। अर्जुन हमारे जैसे बद्ध जीव नहीं है, कभी हम सोचें कि अर्जुन बद्ध जीव है, वो नित्य परिकर है भगवान के, हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। तो इस तरीके से, और अर्जुन जो है उस समय विश्व में सबसे बड़े, सबसे पावरफुल वॉरियर थे, आर्चर है ना, धनुर्धर, सबसे बड़े, सबसे पावरफुल धनुर्धर थे अर्जुन। उन्होंने यहां तक इंद्र को भी युद्ध में हरा दिया था, अपने पिताजी इंद्र के, इंद्र उनके पिताजी थे अर्जुन के, है ना। आपको पता होगा पांडवों का ओरिजिन कैसे हुआ था, है ना, कैसे पैदा हुए थे पांडव लोग? हाँ, देवताओं के द्वारा, है ना, भीम जैसे वायु के पुत्र हैं, अर्जुन जैसे इंद्र के पुत्र हैं, और युधिष्ठिर किन के पुत्र हैं? धर्मराज, और नकुल और सहदेव भी इसी तरीके से, अश्वनी कुमार। तो इनका डिवाइन ओरिजिन है, हमारे जैसे नहीं है ये लोग। और फिर अर्जुन जो है उस टाइम सबसे पावरफुल धनुर्धर अपने समय के, और इंद्र को भी हरा दिया था, शिव जी को भी हरा दिया था, सोचिए सारे देवी देवताओं को वो हरा चुके थे युद्ध में, इतने पावरफुल। और फिर क्या बोल रहे हैं, जब सामने जब उन्होंने देखा कि मेरे सारे रिलेटिव्स खड़े हैं, तो कह रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना, अगर मुझे इसके बदले भीख भी मांगनी पड़े तो मैं तैयार हूं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसी स्थिति, इतने बड़े, उनका गांडीव जो है सरक गया था हाथ से, गांडीव रख दिया अर्जुन ने। पता कितनी बहुत बड़ी बात है ये, अर्जुन ने प्रण लिया था कि जो भी मेरे को एक बार भी बोल देगा कि ये गांडीव को रखने के लिए, तो मैं उसका वध कर दूंगा। अर्जुन ने ये प्रण लिया था, और आज अर्जुन के कंधे से गांडीव जो है अपने आप ही सरक रहा है। तो आप समझ सकते हैं कैसी मेंटल स्थिति है, कैसा उनका जो है मनोस्थिति कैसी है। अर्जुन को एक बार युधिष्ठिर जब 11वें दिन की बात है युद्ध की, कर्ण जो है बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, कर्ण को कोई भी नहीं मार पा रहा था, तो उनको सब लोगों को हरा दिया था, युधिष्ठिर महाराज को भी हरा दिया था, युधिष्ठिर महाराज को घायल कर दिया था कर्ण ने, और जो है फिर युधिष्ठिर महाराज जो है वापिस शिविर में आ गए थे युद्ध के दौरान। और तो जब देखा अर्जुन ने कि युधिष्ठिर महाराज घायल हो गए हैं, तो उन्होंने, और देखा कि वहां पे नहीं है, तो उन्होंने सोचा घायल हो गए हैं बहुत ज्यादा, तो वो शिविर में उनसे मिलने चले गए कृष्ण के साथ। और वहां पे अब युधिष्ठिर महाराज बैठे हैं शिविर में और देख रहे हैं कि अर्जुन आ रहे हैं, और अर्जुन को आते उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि हाँ शायद इन्होंने जो है कर्ण को मार दिया है और मेरे को उसकी खबर देने आए हैं, क्योंकि कर्ण ने मेरा अपमान किया युद्ध में मुझे हरा के, तो अर्जुन ने कर्ण को मार दिया होगा और मुझे वो उसकी खबर देने आ रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ऐसे सोच रहे हैं, और अर्जुन क्या कैसे मिलने जा रहे हैं, कभी ज्यादा चोट तो नहीं लगी क्या है, मतलब देख हाल चाल पूछने के लिए। तो उधर से युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को बोला कि हाँ मैं बस आपका वेट कर रहा था, मुझे जल्दी से वो खबर सुनाइए कि आपने कैसे मारा उसको, मुझे बताइए आपने कैसे जो है कर्ण का वध किया। तो युधिष्ठिर महाराज ने उनसे ऐसे पूछा और काफी उसके अर्जुन के प्रेज में उनकी प्रशंसा बहुत सारी चीजें बोली। तब अर्जुन ने कहा कि नहीं नहीं मैं तो सिर्फ आपका हालचाल पूछने आया था, अभी मैंने मारा नहीं है उसको। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत गुस्से में हो गए कि तुम ऐसे अपने पीठ दिखा के कैसे आ गए बिना मारे, कि अर्जुन ने आपके बड़े भाई को और आपके महाराज आपके राजा को ऐसे किया और उसके बाद आप ऐसे आ गए हो। तो अर्जुन ने फिर बताया कि नहीं नहीं मैं तो आपका हालचाल पूछने आया। तो युधिष्ठिर महाराज ने उनको कहा कि तुम कुछ किसी लायक नहीं हो, इससे तो अच्छा है कि तुम अपना गांडीव छोड़ दो, गांडीव छोड़ के वन में चले जाओ। जैसे ही अर्जुन ने ये चीज सुनी, अर्जुन एकदम बिना कुछ सोचे समझे ही बिकेम सो एंग्री, वो युधिष्ठिर महाराज को मारने चल पड़े अपनी तलवार निकाल के युधिष्ठिर महाराज के। कृष्णा ने उनको पकड़ा एकदम, कि क्या कर रहे हो, ही इज योर ब्रदर, ही इज योर एल्डर ब्रदर, आपके बड़े भाई हैं वो। ऐसी स्थिति हो गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने अर्जुन को, जब अर्जुन का जो गुस्सा शांत हुआ, अर्जुन ने जब पता चला कि उसने कितनी भारी गलती की है, तो क्योंकि लेकिन अर्जुन क्षत्रिय का क्या होता है, क्षत्रिय की जो क्वालिटी होती है कि वो एक बार जो प्रण ले लेता है उसको पूरा करता है। तो अर्जुन ने कहा कि मैंने तो प्रण लिया हुआ है कि जो भी बोलेगा कि गांडी जिसकी मेरा गांडी जो भी बोलेगा कि गांडी ये रख दो दूर फेंक दो तो मैं उसका वध कर दूंगा, लेकिन मुझे तो वध करना है, मैं कैसे अपना और बिना अपना प्रण पूरा किए मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा। लेकिन कृष्ण को पता है, कृष्ण को तो दोनों ही बचाने हैं। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि एक क्षत्रिय के लिए, युधिष्ठिर भी क्षत्रिय हैं, उसका अगर आप अपमान कर दो तो मरने से भी बेहतर बुरा है। तो फिर युधिष्ठिर अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज का अपमान किया कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आपने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, आपने ये कर दिया वो कर दिया, आप इस तरीके से। तो फिर आज जब उनको फील हुआ कि ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनको ऐसे कैसे बोल सकता हूं, क्योंकि उनका बहुत प्रेम था, तो फिर इमीडिएटली जो है ऐसे बोलते ही अपने युधिष्ठिर महाराज के चरणों में गिर पड़े वो कि मुझे माफ कर दीजिए। तो अपनी बात भी पूरी की उन्होंने, इस तरीके से कृष्णा उनको सेव करते थे हमेशा। तो कहने की बात यह है कि अर्जुन इतने बड़े धनुर्धर, इतने बड़े धनुर्धर थे कि उनको कोई अगर किसी ने बोल भी दिया गांडी रखने के लिए तो उसको मारने के लिए, तो अपने बड़े भाई को भी मारने के लिए दौड़ पड़े, और आज वो गांडी जो है उनके कंधे से सर कर रहा है। तो स्थिति देखिए कैसी है। तो भगवत गीता में जो है पहला अध्याय जो है भगवत गीता का, इसमें बेसिकली भूमिका बताई गई है, क्या स्थिति है, दोनों सेनाएं खड़ी हैं, अर्जुन की मनोस्थिति क्या है, क्या वो सोच रहा है उस टाइम, अर्जुन क्या क्या आर्गुमेंट्स देता है युद्ध ना करने के, पांच तरीके के आर्गुमेंट्स देता है अर्जुन, पांच कारण बताता है कि मैं इस वजह से युद्ध नहीं करना चाहता। और इस तरीके वो पहले अध्याय में हमें ये पता चलता है, और क्या पता चलता है पहले अध्याय में, हमें ये भी पता चलता है कि छह कारण भी पता चलते हैं, जिससे पता चलता है पहले अध्याय में पता चल जाता है कि पांडवों की विजय होगी, पहले अध्याय में पता चल जाता है। तो ये चीजें जो है, हम हमारे पास समय तो बहुत कम है क्योंकि हमने प्रोग्राम शेड्यूल जो है 7:45 स्टार्ट करके 8:30 हमें फिनिश करना है, क्योंकि सर्दियों की वजह से अब यही टाइम शेड्यूल रहेगा। तो आप लोगों से वैसे ही प्रार्थना है कि आप 7:30 बजे तो हर हालत में आ जाएं और 7:45 हम लेक्चर शुरू करके 8:30 तक फिनिश कर दें, और ये टाइमिंग रहेगा अभी। तो पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहां से पहले श्लोक से आपको पता चल जाता है धृतराष्ट्र क्या सोच रहे हैं। क्या बोला उन्होंने, मेरे तथा पांडु के पुत्र, क्या पता चल रहा है इससे। हाँ जी, हाँ पांडु, हालांकि हैं दोनों ही कुरु रेस, कुरु वंश से हैं, है ना, और वो इनके पुत्र समान ही हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहीं से आपको पता चल रहा है कि धृतराष्ट्र जो है उनको अपना मानते ही नहीं है, बस मेरे पुत्रों को मिल जाए सब कुछ। धृतराष्ट्र को इतना समझाया गया था, इतना समझाया गया था कि, लेकिन फिर भी वो, उनको समझ में भी आ गया था कि कृष्ण जो है परम भगवान है, और युद्ध में जो पांडवों की ही विजय हो गई, सब कुछ उनको समझा दिया था, वेदव्यास जी ने उनको समझा दिया था, मार्कंडेय ऋषि ने समझा दिया था, इतने सारे ऋषि मुनि वहां पे आते थे मिलने के लिए, उन सब लोगों ने बता दिया था कि आप जो है जहां पे भगवान कृष्ण है वही उन्हीं की विजय होगी, हाँ वहीं वहीं धर्म है, तो आप इनको अपना इनका राज्य दे दीजिए। लेकिन जो है धृतराष्ट्र नहीं दे पाए, किस वजह से, क्योंकि उनका अपने पुत्रों के प्रति बहुत ज्यादा लगाव था, मोह था, इस वजह से उनको जो है वो उनको ये भी पता था कि वो अधर्म की तरफ है, फिर भी वो उनको रोक नहीं पाए। तो यहां पहले श्लोक से पता चल जाता है कि उनके धृतराष्ट्र की मेंटेलिटी क्या है। फिर उसके बाद संजय उवाच दूसरे श्लोक में, अगली बार अगर आप भगवद गीता ले आए तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, साथ साथ में आप पढ़ते रह सकते हैं, ठीक है ना। संजय उवाच, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अच्छा, संजय को जो है वरदान दिया गया था, किसने दिया था? वेद व्यास जी ने दिया था। क्या वरदान दिया था? दिव्य दृष्टि दी थी। सबसे पहले वेद व्यास जी ने कहा था, धृतराष्ट्र को कहा था कि आपको दे देता हूं। धृतराष्ट्र ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपने पुत्रों को मरते हुए नहीं देख पाऊंगा, उनको पता था इनको मरना है, मैं अपने पुत्रों को मरते हुए नहीं देख सकता, कृपया करके आप इन्हीं को दे दे, मैं सुन ही लूंगा, उतना ही काफी है। तो संजय को दिव्य दृष्टि दी थी वेद व्यास जी ने, और उसमें उनको कैसी दृष्टि दी थी कि वो सब कुछ देख सकते थे, ऐसा नहीं कि जैसे एक जगह देख रहे तो दूसरी जगह पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, ऐसा नहीं, पूरा उनको ज्ञान हो रहा था कौन क्या बात कर रहा है, कौन कहां पे कैसी लड़ाई हो रही है, लड़ाई के दौरान भी और शिविर में भी, लड़ाई के बाद भी, ऐसा। तो उनको ऐसी तरह की दिव्य दृष्टि दी गई। तो अब संजय ने जब देखा तो संजय ने कहा कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। हे आचार्य, नेक्स्ट श्लोक, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। द्रुपद के शिष्य कौन थे? हाँ, दृष्टद्युम्न। और ये किनके थे शिष्य? द्रोणाचार्य के। सोचिए, क्षत्रिय की का धर्म देखिए, द्रोणाचार्य को पता था कि दृष्टद्युम्न जो है ये मेरे मौत का कारण बनेगा, लेकिन फिर भी उनको पूरी शिक्षा दी थी, धनुर्वेद पूरा पूरा ज्ञान दिया था युद्ध करने का, और उनको पता है कि ये मेरे को मारेगा, ऐसे होते थे पहले क्षत्रिय। तो अच्छा, यहां पे अब दुर्योधन की मेंटेलिटी का पता चलता है। श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उनको जब ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा। यहां पे क्या बोल रहे हैं दुर्योधन की, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। यहां पे वो उनके एंगर को, गुस्से को बढ़ाना चाह रहे हैं। क्या कि आपने जिसको ज्ञान दिया था ना सेना युद्ध करने का कौशल दिया था, वो आज आपके सामने खड़ा है, वो आपके कारण है आज ये है स्थिति, तो ऐसे बोलना चाह रहे हैं श्लोक में दुर्योधन। ठीक बात है। तो हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। नेक्स्ट श्लोक, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी, युधान, विराट तथा द्रुपद। तो तीन तरह के ये होते हैं, रथी, महारथी और अतिरथी। पांडवों की सेना में और दुर्योधन और कौरवों की सेना में अतिरथी और महारथी बहुत ज्यादा थे। ये क्या होते हैं? अतिरथी जो होता है वो एक साथ 60,000 सैनिकों को युद्ध कर सकता है, 60,000 अतिरथी का मतलब ये होता है। महारथी उससे थोड़ा कम होता है, और फिर रथी 1,000, रथी जो होता है 1,000 सैनिकों के साथ साइमल्टेनियसली युद्ध कर सकता है। तो अर्जुन इतना बड़े अर्जुन जैसे अर्जुन है, भीष्म है, द्रोण है, ये सारे अतिरथी हैं, अतिरथी कर्ण है, जैसे एक बार में 60,000 लोगों को ये स्लेन कर सकते, मार सकते। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में कितने लोग मारे गए थे, कितने लोग मारे गए थे 18 दिन में? 64 करोड़। सोच सकते हैं आप, 64 करोड़ लोग मारे गए थे। बिगेस्ट फाइट एवर फॉट। और जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध, जो कुरुक्षेत्र आप आजकल देखते हैं, ये कुरुक्षेत्र जो बहुत बड़ा था उस टाइम, जब जयद्रथ का वध करना था तो कौरवों ने जयद्रथ को बचाना था हर हालत में, क्योंकि अर्जुन ने बोला था कि अगर मैं जयद्रथ को नहीं मारूंगा तो मैं अपनी फिर आत्महत्या कर लूंगा। तो कौरवों ने सोचा अगर हम जयद्रथ को बचा लेंगे तो अर्जुन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने जयद्रथ को बचाने के लिए कितनी बड़ी सेना की व्यवस्था की थी आपको पता है? मतलब इधर से इधर तक देखें तो 20 माइल्स, एक माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, 2 मान लो, तो 40 किलोमीटर लंबा चौड़ाई थी सामने से देखने में उसकी, युद्ध की, कौरवों की सेना की, और 40 किलोमीटर ही डीप था, और उस 40 किलोमीटर के एंड पे जयद्रथ खड़े थे, इतनी सेना। और अर्जुन को एक ही दिन में 12 घंटे के अंदर जो है जयद्रथ तक पहुंचना था और सबको मारना था, ऐसे धनुर्धर थे, और उन्होंने मारा उनको। और आज वो अभी आप देखेंगे कि उनकी क्या हालत हो गई है। तो उसके बाद इसके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज और सेव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं, ये दुर्योधन बोल रहे हैं। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम ओजा, सुभद्रा का पुत्र, सुभद्रा के पुत्र कौन है, अभिमन्यु, तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, नेक्स्ट श्लोक, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। नेक्स्ट श्लोक 8वां, मेरी सेना में स्वयं आप, तो किनको संबोधित कर रहे हैं, द्रोणाचार्य को, स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक, ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं, वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। 10th श्लोक, हमारी शक्ति अपरिमेय है, अपरिमेय मतलब इमेजरेबल, असीम है, और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। 12वां श्लोक, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। शंख उन्होंने बजाया, मतलब युद्ध शुरू करने के उन्होंने घोषणा कर दी। नेक्स्ट श्लोक, तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और सिंह, सहसा, एक्सा एक साथ बज उठे, वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब देखिए 13वें श्लोक तक जो है कौरवों ने शंख बजाए हैं, अब 14वें श्लोक में जो है पांडु पुत्रों ने शंख बजाए हैं उसमें। लेकिन जब कौरवों के शंख बजे हैं तो उसमें कोई दिव्य शंख की बात नहीं हुई है, लेकिन जब इनके शंख बजे हैं तो इनके शंखों को क्या बोला गया है, दिव्य शंख। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अर्जुन का जो रथ था वो भी बड़ा, बहुत बड़ा था अर्जुन का रथ। किसने दिया था अर्जुन को रथ, अग्निदेवता ने। प्रभु जी ने बहुत अच्छे से महाभारत देखी है। और उसमें कितने घोड़े थे, 1000 घोड़े थे, तो दिव्य शंख, इनके दिव्य शंख बजे थे। अर्जुन के पास जो शंख था और जितने भी इनके पांडवों के पास जितने भी शंख थे, ये एक विजय की निशानी है दिव्य शंख बजना। और जब दिव्य शंख बजते हैं तो देखना कि देखिए आप क्या होगा आगे। भगवान कृष्ण ने अपना पांच जन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख और अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक भयंकर शंख बजाया। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष तथा मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी दृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। अच्छा, आप लोगों से प्रार्थना है कि जैसे आज हम सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप भगवद गीता को अच्छे से समझना चाहते हैं, हम लोग इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें सारी डिस्कस हो जाएंगी, लेकिन फिर भी जो है ये तात्पर्य जो है प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य दिए जरूर पढ़ने हैं घर से। जैसे आपको हफ्ते का टाइम मिलता है बीच में, तो ये घर से पूरा पढ़ के आ जाए, ठीक है ना? क्योंकि अभी तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पूरा वो भी पढ़ें, इसलिए हम सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि, 19वां श्लोक, इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगे। ये देखिए, जब कौरवों ने शंख बजाए थे तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है वेदव्यास जी ने कि पांडव लोग डर गए थे, लेकिन जब पांडवों की दिव्य शंख बजे हैं तो कौरवों के हृदय जो है विदीर्ण हो गए हैं, क्योंकि उनके दिव्य शंख हैं। और जब पांडव लोग जब शंख बजाते थे, जैसे भगवान जब, तो अगले श्लोक में आपको पता चलेगा, उस समय, नेक्स्ट श्लोक, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब यहां पे एक खास और बात बताई गई है, क्या है? कपि ध्वज, कि अर्जुन का जो रथ है उसकी ध्वजा पे कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी कहां से आ गए यहां पे? नहीं, वो तो है ही है, लेकिन युद्ध में क्या कर रहे हैं? हाँ, यस, राम भक्त हैं, और भगवान कृष्ण के ही अवतार कौन है? भगवान राम है, इसलिए वो जो है हेल्प करने के लिए आ गए हैं, लड़ने नहीं आए हैं उन्होंने, क्योंकि वो बहुत बूढ़े हैं। जब और बहुत बूढ़े हैं तो ये कैसे हेल्प करते हैं? जब अर्जब भीम चिंगाड़ लगाते थे अपनी विजय की, जब चिंगाड़ लगाते थे, जब मारते थे कौरवों को, तो हनुमान जो है साथ में अपनी आवाज उसके साथ जोड़ देते थे, तो उसकी आवाज सुन के ही कुछ लोग तो जो है कौरवों के, जो इवन पांडवों के भी वैसे ही मर जाते थे सिर्फ चिंगाड़ सुनने से। हाँ, हो सकता है, क्योंकि हनुमान जी को जब मिले थे ना भीम, हनुमान जी को कब मिले थे? जब इनको वनवास दिया गया था, और काम्यक वन में भीम जो है द्रौपदी महारानी के लिए कमल का फूल लेने गए थे। द्रौपदी महारानी ने देखा 1000 पेटल गोल्डन लोटस फ्लावर, बड़ा सुंदर जो है सोने का कमल का फूल, 1000 पत्ते हैं उसमें, देख के बहुत बड़ा बड़ा सुंदर था, तो द्रौपदी महारानी ने कहा कि मुझे ये दीजिए। तो फिर जो है भीम उनको लेने जाते हैं, ढूंढने जाते हैं, और यक्ष की यक्षों की उसमें कुबेर की कुछ वो थी, क्या नाम, झील, उसमें जाते हैं, तो वहां उस रस्ते में उनको हनुमान जी मिलते हैं, वो पूंछ उनके बीच में होती है, तो कहते हैं कि आप अपनी पूंछ हटाइए, तो फिर भीम बोलते हैं, हनुमान बोलते हैं कि मैं बहुत बूढ़ा हूं, आप खुद ही उठा लीजिए। तो वो उठाने की कोशिश करते हैं तो उनसे उठती नहीं है, बहुत एक हाथ से उठाते, पहले उल्टे हाथ से उठाने की कोशिश की, फिर दोनों हाथों से पूरा जोर लगाया, फिर भी पूंछ नहीं उठी। फिर वो समझ जाते हैं कि कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। फिर वो उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करके बताइए आप कौन है। फिर जो है हनुमान जी उनको बताते हैं कि, और फिर वो आपस में मिलते हैं कि हम तो दोनों भाई भाई हैं। फिर भीम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हनुमान जी से कि आप हनुमान जी, आपने भगवान राम की, रावण की पूरी सेना का वध कर दिया था, आप कृपया करके वो रूप दिखाइए मुझे। तो हनुमान जी कहते हैं नहीं नहीं बहुत टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो है भीम बहुत अड़ियल, वो मानते नहीं है कि नहीं नहीं मुझे वही रूप दिखाइए। तो हनुमान जी ने जब अपना रूप दिखाया तो वो सिर्फ थोड़ा सा ही देख पाए थे। सो इतना बड़ा उनका रूप था, जिस रूप में उन्होंने युद्ध किया था। तो भीम को सोचिए, आपके सामने कोई इतनी बड़ी दीवार हो जाए तो पूरी दीवार देख नहीं पाएंगे ना, छोटे से ही देख पाएंगे, थोड़ा सा पोर्शन जो आपकी आंखों के सामने, उनको इतना बड़ा दिखाई दिया था। और उसके बाद तो फिर हनुमान जी ने कहा था कि ठीक है मैं युद्ध तो नहीं करूंगा क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हूं, लेकिन मैं, और मुझे बूढ़े की भी बात नहीं है, क्योंकि ये जब हनुमान जी ने युद्ध वहां पे युद्ध किया था, ये लोग कुछ भी नहीं है, हनुमान जी की सिर्फ फूंक से ही उड़ सकते हैं सारे, ऐसी स्थिति थी उस टाइम। तो हनुमान जी का ठीक है कि मैं फिर कपिध्वज के रूप में, मतलब अर्जुन जी की रथ पे जो ध्वजा है उस पे विराजमान रहूंगा, और जैसे ही आप चिंगाड़ लगाओगे मैं आपकी चिंगाड़ के साथ अपनी चिंगाड़ को। हाँ एक बार क्या हुआ था युद्ध में, जब अर्जुन कर्ण के साथ युद्ध कर रहे थे तो हनुमान जी ध्वजा से निकल के कर्ण के रथ पे चले गए थे और कर्ण की ध्वजा को और रथ को तोड़ दिया था। तो ऐसे हनुमान जी तो साक्षात विराजमान थे वहां पे। उस टाइम जो रामायण के समय जो युद्ध हुआ था वो बहुत भयंकर था वो युद्ध भी। एक बार भीम को घमंड हो गया कि उसने, युद्ध के बाद की बात है ये, कि उसने, उसकी वजह से युद्ध में वो जीते हैं पांडव लोग, भीम को ऐसा घमंड हो गया। तो अर्जुन ने क्या, भगवान कृष्ण ने क्या कहा, भगवान कृष्ण उनको साउथ में कहीं लेके गए एक झील के किनारे, उनको बोला कि ये झील जो है, इस झील की आप पेरिफेरी नापो, कितना कितनी बड़ी है ये झील। तो भीम ने कहा कि तो मेरे उल्टे हाथ की बात, इसमें क्या है, अभी पता। वो भागना शुरू करते हैं, भागना शुरू करते हैं, वो कई दिनों तक, महीनों तक भागते रहते हैं उसके चारों तरफ, वो उनका कभी और छोर पता ही नहीं चलता झील का। और बीच में उनको यक्षरा कुछ मिलते हैं और उनसे उनको भी हरा नहीं पाते हैं। तो भगवान कृष्ण फिर भीम को बताते हैं कि ये जो झील है जिसका आप और छोर पता नहीं कर पाए, ये पता ही क्या है, ये कुंभकर्ण की खोपड़ी है, और खोपड़ी के अंदर पानी इकट्ठा हो गया है, पानी कुछ, ये वो झील है। और जिन राक्षसों को आप मार नहीं पाए, ये वो राक्षस हैं जो उस टाइम रावण की सेना में थे। तब भीम को रियलाइज होता है कि हाँ क्या स्थिति थी उस टाइम और मेरी क्या स्थिति है। तो इस तरीके से, तो ये हनुमान जी का यहां पे बहुत अच्छा है कि उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। तो यहां पे अर्जुन जो है अब तीर चलाने के लिए खड़े हुए हैं, जाने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, समय भी हो गया है, खत्म किया जाए क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग, क्लास खत्म कर दें अभी? चलो 2 मिनट और करते हैं क्योंकि हमें टाइम की पाबंदी है, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी समय पे घर पहुंचे। तो अगर आप 7:30 बजे आ जाएंगे तो बहुत अच्छे से हम जो है क्लास को 1 घंटे तक कर सकते हैं, अभी हमारे पास समय है ही नहीं। तो अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, अच्युत का मतलब क्या है, ओ इनफालिबल वन, मतलब जिनका कभी जो है, जो कभी माया के वशीभूत नहीं है, माया जिनके वश में रहती है, हे अच्युत कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो यहां पे अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं। अब भगवान कृष्ण देखिए, आप भगवान कृष्ण का यहां पे भक्त वत्सलता पता चलती है। भक्त वत्सलता क्या होती है, कि वो भगवान अपने भक्तों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, अपने भक्तों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा। सोचिए सारथी बनना किसको पसंद है, कौन बनना चाहेगा सारथी, है ना। कर्ण को पूरे महाभारत में कितनी बार द्यूत पुत्र सारथी का पुत्र बोल के उनको कितना उनको और उनको कितना गुस्सा उठता था इस बात से। और भगवान ने क्या लिया है अपने लिए, कौन सी सेवा ली है, सारथी बनने की। और उसमें भी ऐसी स्थिति होती थी कि युद्ध में सुनाई नहीं देता था, इतना बड़ा रथ है, सोचिए 1000 घोड़े हैं उसमें और भगवान को हर घोड़े को संभालना है, है? और उसमें अर्जुन जो बोल रहा है सारथी को, भगवान को जो बोलना चाह रहे हैं वो भी सुनाई नहीं देगा, युद्ध में इतना कोलाहल है। तो अर्जुन क्या करते थे, पैर से लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट पैर मारते थे भगवान को, राइट मुड़ना है तो राइट पैर से भगवान को अपनी लात जो है ऐसे टच करते थे। सोचिए ऐसी उन्होंने अपनी पोजीशन ली भगवान, भक्त वत्सलता। भगवान अपने आचरण से हमें सिखाते हैं कि भक्तों की सेवा करनी चाहिए, जो भगवान हमें, भगवान खुद भक्तों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं तो हमें तो फिर है ना हमेशा जो है। तो यहां से यह पता चलता है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में अब अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहां पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय उवाच, 24वां श्लोक। संजय ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इससे पहले भी एक बात हुई थी, इससे पहले क्या हुआ था, अच्छा ये जो जैसे आचार्यगण बताते हैं कि थोड़े समय के लिए चला था, 40-45 मिनट का ये सारा संवाद था भगवान कृष्ण के और अर्जुन के बीच में। और जब ये संवाद चला और फिर उसके बाद अर्जुन को समझ में आ गया तो फिर युधिष्ठिर महाराज अपने रथ से उतरे और पैदल चलने लगे कौरवों की सेना की तरफ। तो सब लोग सोच रहे थे कि कभी युधिष्ठिर महाराज जाके और भीष्म पितामह को ये ना बोल दें कि हमें युद्ध नहीं करना है, जो आप आपको जो चाहिए ले लीजिए। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जाते हैं और भीष्म पितामह के पास सबसे पहले जाते हैं, क्या करने जाते हैं, हाँ प्रणाम करने, और क्या लेने जाते हैं, आशीर्वाद। कैसा आशीर्वाद, कि हम विजयी हों। और क्या पूछते हैं उनसे, हाँ आपकी, और हमें यह भी बताइए कि आपकी मृत्यु कैसे होगी, है ना। इसी तरीके से युधिष्ठिर महाराज फिर द्रोण जी के पास जाते हैं, फिर कृपाचार्य जी के पास जाते हैं, सब लोगों के पास जाते हैं, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, सब लोग उनको आशीर्वाद देते हैं कि हाँ आपकी विजय होगी। अगर युधिष्ठिर महाराज नहीं जाते तो इन सब लोगों ने सोच रखा था कि श्राप दे देंगे वो। तो ये सारा भगवान का अरेंजमेंट होता, भगवान हर क्षण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, हर क्षण। आप महाभारत पढ़ेंगे तो आपको, आपने देखा होगा कि हर क्षण भगवान जो है, जब भी उनको थोड़ा सा भी ऐसा हुआ कि इमीजिएटली जो भगवान पहुंच जाते थे भक्तों की रक्षा करने के लिए, हर क्षण। भगवान को क्या बोला गया है, ऋषिकेश। भगवान जो है इंद्रियों के स्वामी हैं, हमारे सबके इंद्रियों के स्वामी हैं। तो पांडवों ने क्या किया था, पांडवों ने भगवान को की सेवा में अपनी सारी इंद्रियों को लगा दिया था, भगवान जैसा चाहते थे उस वैसा ही करते थे। भगवान कृष्ण अगर वो कुछ भी बोल देते थे तो पांडु पुत्र दूसरी बार ये नहीं पूछते थे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, चाहे उनको उस समय ऐसा लग रहा हो कि नहीं नहीं ये तो कुछ, उस टाइम वो समझ नहीं पा रहे थे सिचुएशन को, लेकिन फिर भी वो मानते थे। क्यों, क्योंकि उनको पता था कि परम भगवान है, बहुत प्रेम का रिश्ता था भगवान का उनके साथ। तो यहां पे संजय उवाच, आई थिंक खत्म करना चाहिए, प्रभु जी 8:35 हो गया, अच्छा ठीक है। तो संजय उवाच, संजय ने कहा कि हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अच्छा देखिए, अभी हम ये संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ रहे हैं, ये श्लोक जो है इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं, बीच बीच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे जब भगवान कृष्ण को भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं तो कहीं पे मधुसूदन वर्ड यूज कर रहे हैं, कहीं पे अलग अलग ऋषिकेश वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इनके सभी हर वर्ड का बहुत महत्व है। भगवत गीता में जो हम पढ़ेंगे हर वर्ड का बहुत महत्व है। तो अभी जब आएगा तो हम आपको बीच बीच में बताएंगे, अभी तक हमने बताया नहीं आपको। तो यहां पे हाँ यहां पे संजय उवाच एवं उक्तो ऋषिकेश गुड़ाकेशेन भारत सेनियोर उभयोर मध्ये स्थापित रथो उत्तमम। तो यहां पे अब भगवान को ऋषिकेश बोला है संजय ने, भगवान कृष्ण ऋषिकेश। अब ऋषिकेश क्यों बोला है ये बात समझने की है, क्यों बोला ऋषिकेश, क्यों बोला बताइए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इससे इसके साथ कैसे जोड़ेंगे उसको। संजय ने कहा हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार अर्जुन ने क्या संबोधित किया था कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहां पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। और संजय ने कहा हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियां तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है, अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। ये तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी के, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के जब तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा एक एक वर्ड का मीनिंग, क्यों ऋषिकेश वर्ड यूज कर रहे हैं, क्यों गुड़ाकेश बोल रहे हैं, क्यों मधुसूदन बोल रहे हैं उस टाइम। हर वर्ड का बहुत महत्व है। फिर उसके बाद भीष्म द्रोण, नेक्स्ट श्लोक, भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पोत्रों मित्रों ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। पूरा परिवार जो है जिनकी गोदी में भगवान अर्जुन जो है खेले हैं वो भी आज जो है उनके सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। करुणा से अभिभूत हो गया, करुणा का मतलब क्या होता है, करुणा का मतलब क्या होता है, दया। ये एक भक्त का गुण है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन को करुणा क्यों आई, अर्जुन को दया क्यों आई। ये नेचुरल है, बहुत ही नेचुरल है कि अर्जुन एक शुद्ध भक्त हैं और शुद्ध भक्त को जब किसी को बोला जाए कि मारने के लिए तो डेफिनेटली जो उसको दया आएगी, है ना, करुणावश। तो एक कारण अर्जुन का ये था युद्ध ना करने का, अर्जुन पहला कारण है ये अर्जुन का युद्ध ना करने का। पांच कारण हम आपको बताएंगे इसमें, तो पहला कारण क्या है, करुणा। अब याद रखना क्योंकि अगली बार जब आएंगे तो हम पूछेंगे। नेक्स्ट श्लोक, अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अच्छा, अब आप इस स्थिति को हमारे साथ कंपेयर कीजिए कि आपका मुंह कब सूखता है। कभी हमारा आप लोगों में से किसी का ऐसा हुआ है कि शरीर कांप रहे हो, कांप रहा हो और मुंह सूखा जा रहा हो, कब होता है ऐसा? और टेंशन और हाँ ये भी एग्जाम है, ये भी एग्जाम ही है, अर्जुन का एग्जाम चल रहा है। और हाँ यस, तो अब मैं क्यों पूछ रहा हूं आपसे, ताकि आप रियलाइज कर पाए अर्जुन की स्थिति क्या है। जब आप अर्जुन की जगह अपने को रखेंगे तो आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे चीजों को। हाँ चिंता से, वेरी गुड। हाँ तो मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडी धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। सोचिए क्या स्थिति है, मेरा शरीर, अर्जुन का शरीर कांप रहा है, इतने बड़े धनुर्धर जिनके सामने और जो अतिरथी हैं, एक साथ 60,000 सैनिकों, 60,000 सैनिक नहीं, नॉर्मल सैनिकों की बात नहीं हो रही, 7,000 धनुर्धरों के साथ वो अकेले युद्ध करके मार सकते हैं उनको, और आज उनकी क्या स्थिति है कि वो कांप रहे हैं और उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। और गांडीव जिसके लिए उन्होंने प्रण लिया था कि जो मेरे को बोल देगा ये गांडीव छोड़ने के लिए मैं उसका वध कर दूंगा, और वही गांडीव जो है आज सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। हाँ, मैं अब यहां अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं, मैं अपने को भूल रहा हूं और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अब ये तात्पर्य पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं। कैसे प्रभुपाद जी इस तात्पर्य को हमारी स्थिति के साथ कंपेयर करते हैं कि भौतिक जगत में भी ऐसा ही होता है, हम सब लोगों की ऐसी स्थिति है, हर रोज होती है। हो सकता है कि इतने ज्यादा उसमें नहीं हो, लेकिन हर रोज हम कांपते हैं, हर रोज हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, हर रोज हमारा जो है गांडी सरक रहा होता है, मतलब हम ड्यूटी के अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे होते हैं, हर रोज हमारी त्वचा जल रही होती है। हाँ, क्यों होता है ऐसा? आप सबने अभी आंसर दिया था, किसने? टेंशन नहीं, किसी ने, मोह की वजह से होता है, आसक्ति। इसमें हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किस प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। यहां पे अर्जुन और कारण दे रहे हैं अपने युद्ध ना करने का, कि मुझे कोई अच्छाई दिख ही नहीं रही है, इसमें क्या अच्छाई है युद्ध करने में, इतने लोगों को मारने में। हे गोविंद, मुझे राज्य सुख तथा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। ये जब सारे लोग मारे जाएंगे तो मैं इस सारे राज्य का क्या करूंगा, अकेला व्यक्ति। अब अकेले व्यक्ति को आप, है ना, एक फैमिली है जैसे, व्यक्ति किसके साथ एंजॉय करता है? फैमिली के साथ एंजॉय करता है ना। अब फैमिली सारी मर जाएगी तो किसके साथ एंजॉय करूंगा मैं? अर्जुन अपने ही बारे में सोचता जा रहा है, मैं नहीं कर सकता, मैं किसके साथ एंजॉय कर तो दूसरा कारण है ये। अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि मैं फिर एंजॉय किसके साथ करूंगा, युद्ध कर लूंगा, इनको सबको मार भी दूंगा, फिर मैं एंजॉय किसके साथ मैं जो है अपनी खुशियां बांटूंगा। क्योंकि जिन सारे लोगों के साथ हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं उन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे ही क्यों ना मार दें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में वे मुझे तीनों लोक क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। ये जो अर्जुन अभी जितनी भी चीजें बता रहे हैं, अभी अर्जुन ये नहीं सोच रहे हैं कि भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं, अभी वो अपनी ही आर्गुमेंट दे रहे हैं कि नहीं ये होगा, ये होगा, ऐसा करेंगे तो क्या इसका हमें मिलेगा, फायदा होगा, है ना। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, तीसरा कारण। क्या बोला अर्जुन ने? पहला क्या था? करुणा। दूसरा, हाँ, एंजॉयमेंट, हम किसके साथ खुशियां बांटेंगे। तीसरा, पाप, इनको मारेंगे, पितृगण, हाँ, गुरुजन, पौत्र, सारे इन सब लोग जो इतने हमारे जो आदरणीय हैं, जो पूजनीय हैं, उनको मारेंगे तो पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो यहां पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि आतताई, इसमें आतताई मीनिंग वर्ड आया है, तो आतताई जो है 6 प्रकार के होते हैं और उनको अगर आप मार दें तो उनका फिर आपको पाप नहीं चढ़ता, शास्त्रों में लिखा गया है। 6 तरह के आतताई होते हैं, विष देने वाला, घर में अगली लगाने वाला, किसी के घर में आग लगा दी। आप देख रहे हैं ये 6 के 6 कौरवों ने किए थे, विश भी दिया था, किसको दिया था विश? भीम को दिया था, ठीक है। दूसरा आतताई होते हैं घर में अग्नि लगाने वाले, लाक्षाग्रह को। तीसरे घातक हथियार से आक्रमण करने वाले, घातक हथियार से आक्रमण तो चल ही रहा है ना, मरने के लिए, मारने के लिए तैयार खड़े हैं। और किसको मारा था? हाँ, और धन लूटने वाले, धन भी लूटा उन्होंने, उनको भेज दिया, उनका धन लूट के उनको जंगल में भेज दिया और फिर उनको दिया नहीं। दूसरे की जमीन हड़पने वाला, और छठा जो आतताई कौन है? पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो छह के छह जो है कौरवों ने किए थे। तो वैसे शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर इन छह में से किसी कोई भी आतताई अगर आप मार देंगे तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा। नेक्स्ट श्लोक, हे जनार्दन, यदि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने हथियार को अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों को से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट होने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों? चौथा कारण क्या? परिवार का नष्ट होना, कुल परंपरा खत्म हो जाना, डायनेस्टी खत्म हो जाएगी सारी, चौथा कारण। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अब अगले बार जब आएंगे तो यह श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे, 1.39 पहले अध्याय का 39वां श्लोक। इसको हम अब यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है। कोई प्रश्न है तो एक दो प्रश्न हम ले सकते हैं। नहीं, ये तो कोई जरूरी नहीं, तो बहुत सारे जो है सीनियर डिवोटीज। हाँ, यहीं से होगा, 1.39 से होगा। कुरु क्यों कहा गया है मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन वंश का नाम है ये कुरु वंश। अच्छा, मुझे नहीं पता प्रभु जी, कुरु तो पूछ रहे हैं कि कुरु किस लिए? हो सकता है उनके वंश से हो, इसलिए उनका, जैसे जैसे पांडु इनको बोला गया तो ये होते इनके इनके पिताजी का नाम था पांडु, इसलिए पांडुपुत्र उनको बोला, पांडव बोलते थे। वैसे पांडव भी जो है कुरु वंश से ही हैं, वंश का नाम है। अब वो किसी राजा के नाम से डेफिनेटली पड़ा होगा। हाँ, यस यस, ये भी है। हाँ, बिल्कुल सही। और कोई प्रश्न पूछना चाहे तो?
कलयुग में जैसे अगर कोई आपका जैसे ऐसे धरती या पैसा ले लेता है तो उसके साथ हमें क्या करना चाहिए?
शास्त्रों में जो लिखा है ना, शास्त्रों में जो लिखा है वो सच है, लेकिन आजकल की जो जनता है या गवर्नमेंट है वो शास्त्रों को नहीं मानती है ना। अगर गवर्नमेंट जो है हमारी वैदिक होती तो डेफिनेटली वैदिक रूल्स मनु संहिता में जो लिखे हैं वो अपने आप फॉलो होते, लेकिन अब हम जो है अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट नहीं मानेगी, हमें नहीं करना चाहिए। हाँ जी, वी शुड टेक हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट और लॉ। बट अगर आप मार देंगे तो आपको, अगर हायर प्रिंसिपल की बात करें तो आपको पाप नहीं लगेगा, सिंपल, बट गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी। उनके पास दिव्य शंख क्यों नहीं थे? पांडवों के पास दिव्य शंख थे क्योंकि पांडव खुद दिव्य हैं। पांडवों का ओरिजिन जो है, उनका जो जन्म है, हम जैसे आम व्यक्तियों की तरीके से नहीं है। पांडव जो लोग हैं, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, ये हमेशा भगवान के साथ ही भगवान के पार्षद के रूप में रहते हैं किसी ना किसी। अभी जैसे युद्ध में आए हैं, फिर कहीं और किसी दूसरे, जब भगवान का कोई दूसरा अवतार होगा या भगवान खुद जाएंगे तो उनके साथ किसी न किसी रूप में हमेशा साथ में रहते हैं। तो वो उनका, उनको स्पेसिफिकली, जैसे अर्जुन के पास दिव्य अस्त्र भी थे, हाँ, इनके पास अर्जुन के पास दिव्य अस्त्र हैं, अर्जुन के पास जैसे कपि ध्वज है, अर्जुन के पास जैसे दिव्य शंख हैं, वो बहुत सारी चीजें दिव्य हैं उनके पास, क्योंकि दिव्य क्यों, क्योंकि भगवान खुद उनके साथ हैं, इसलिए सारी चीजें उनके साथ इकट्ठी हो गई हैं। कौन? हाँ जी, हाँ, यस। नहीं, जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि शंख होना चाहिए, लेकिन भीष्म पितामह भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और उनको पता था कि जो कृष्ण है ये कोई आम व्यक्ति नहीं, ये खुद परम भगवान है। और भीष्म पितामह ने क्यों कौरवों की तरफ से, भीष्म पितामह बिल्कुल भी युद्ध नहीं करना चाहते थे, ही वॉज डूइंग जस्ट आउट ऑफ ड्यूटी। क्यों? क्योंकि वो जो है जिनका, वो किनका अन्न खा रहे थे, कौरवों का अन्न खा रहे थे, इसलिए जो है वो बेचारे ना चाहते हुए भी उन्हें आउट ऑफ ड्यूटी उन्हें युद्ध करना पड़ रहा था, अदरवाइज वो नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी जो है भगवान कृष्ण ने उनके ऊपर इतनी कृपा की कि जब वो 56 दिन वो शैया पे लेटे रहे और जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था तो भगवान उनके साथ थे। और भगवान ने, सोचिए, भगवान कृष्ण ने प्रण लिया था कि मैं कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं उठाऊंगा, हाँ, युद्ध में। लेकिन उन्होंने भीष्म को मारने के लिए क्या उठाया था? पहिया, अपनी वो प्रतिज्ञा को भी तोड़ दिया। किस लिए? भक्त के लिए। भक्त कौन? भक्त भीष्म पितामह चाहते थे कि वो युद्ध करें, तो अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ने के लिए तैयार, सिर्फ भक्त को खुश करने के लिए। हाँ, ये भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण जो है हमेशा तैयार रहते हैं भक्तों के करने के लिए खुश, भक्तों को खुश करना, भक्तों की सेवा, ये भगवान कृष्ण है। तो भीष्म पितामह जो है वो भी आम व्यक्ति नहीं है, वो भी वसु हैं, एक वसु। 18 दिन। हाँ, उन्होंने फिर मारा भी नहीं था, उठा के सिर्फ जब वो गए थे और जैसे ही भीष्म पितामह ने देखा कि हाँ, भीष्म पितामह ने अपने जो है सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए, जैसे ही भगवान कृष्ण, क्योंकि उसी चीज का वेट कर रहे थे भीष्म पितामह, हाँ, लेकिन उन्होंने फेंका नहीं था। क्यों नहीं फेंका था? पीछे से अर्जुन ने बोल दिया था, कृष्णा रुको, आपने प्रण लिया है, आप अपना प्रण तोड़ दोगे तो लोग जो एथिस्ट क्लास के जो लोग हैं, जो एथिस्ट मतलब जो नास्तिक लोग हैं, वो क्या कहेंगे कि ये कैसे भगवान है, तो अपना प्रण भी तोड़ देते, वो समझ नहीं पाएंगे कि भक्त के लिए कर रहे हैं, इसलिए रुको, आप मत फेंको। तो उन्होंने रोक लिया था अपने आप को फिर, ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ जी, श्री कृष्ण को लक्ष्मीपति क्यों कहा गया है? क्योंकि लक्ष्मी उनके चरण सेवा करती है, उनकी पत्नी है, है ना। भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए हजारों हजारों लक्ष्मियां, लक्ष्मी सहस्त्र से संब्रह्म सेव्य मानम, भगवान कृष्ण की चरण सेवा करने के लिए लाखों करोड़ों लक्ष्मियां जो है वेट करती हैं लाइन लगा के कि कब उनकी चरण सेवा मिलेगी। अभी भी लक्ष्मी देवी जो है भगवान कृष्ण के रासलीला में जाने के लिए जो है बेल वन में तपस्या कर रही है, लेकिन उनको जो है रास में एंट्री नहीं मिल रही है। हरे कृष्ण। राधा रानी तो भगवान की ही एक्सपेंशन है, अंतरंगा शक्ति। हाँ, राधा रानी से ही सारी लक्ष्मियां, सारी दुर्गा, सारे सब कुछ राधा रानी से निकले हैं, राधा रानी का एक्सपेंशन है। अभी टाइम फिनिश हो गया है। आपको क्या लगता है? द्रौपदी महारानी भी आम औरत नहीं है, दिव्य हैं वो भी। भगवान को जो अपनी कार्य पूरा करना होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्यक्तानाम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य हम। कब सृजाम्य करते हैं भगवान, कब अपने को प्रकट करते हैं, जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है, धर्म की स्थापना करनी होती है तो वो निमित्त बनाते हैं। इसलिए द्रौपदी महारानी को यह मत सोचें, द्रौपदी महारानी बहुत हाईएस्ट भक्त हैं, हाई लेवल के भक्त हैं द्रौपदी महारानी। हाँ दिव्य, क्यों नहीं दिव्य हैं, लेकिन कर्ण जो है, कर्ण को पता चल गया था, कर्ण भी पता था कि दुर्योधन जो है ये गलत कार्य कर रहा है, लेकिन क्योंकि एक बार दुर्योधन ने कर्ण को जब युद्धों की उसकी परीक्षा चल रही थी, क्या बोलते हैं उसको, रण, जब वो सब लोग अपने सीख के आए थे ना, और वो दिखा रहे थे कि हम ये सीख के आए हैं, तो कर्ण जब अंदर आया तो उन्होंने मना कर दिया था कि ये सूत पुत्र है, ये नहीं कर सकता, लेकिन दुर्योधन ने कहा था कि नहीं, ये सूत पुत्र है, मैं इसको अभी जो अंग देश का राजा बनाता हूं, और ये भी अभी अपने जो अस्त्र शस्त्र चला के दिखाएगा। और तब जो कर्ण ने अपने अस्त्र शस्त्र चला के दिखाए अर्जुन के बराबर, तो कर्ण उस वजह से हमेशा दुर्योधन के कि इसने मेरी उस समय मेरे सम्मान उसकी रक्षा की थी, इस वजह से वो जो हमेशा वो है अर्जुन सॉरी दुर्योधन के उसमें रहा, हालांकि कर्ण को पता था कि ये गलत कर रहे हैं, गलत थी उसकी सोच, ये गलत थी उसकी सोच।